चौथा स्कंद,
बारहवां अध्याय। ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक संख्या 14।
एवं बहुसवम कालम महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गौपायिकं नीत्वा पुत्राय दानृपासनम्।
श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। इस प्रकार आत्मसंयमी परम पुरुष ध्रुव महाराज ने तीन प्रकार के सांसारिक कार्यों, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। तात्पर्य, धर्म का पालन करने से भौतिक जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। इससे स्वतः आर्थिक विकास होता है और तब समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में कोई कठिनाई नहीं होती। राजा के रूप में ध्रुव महाराज को अपनी स्थिति बनाए रखना था, अन्यथा प्रजा पर शासन करना संभव न था, और उन्होंने इसे इच्छा तरह अच्छी तरह निभाया। जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र बड़ा हो गया है और राज सिंहासन का भार ग्रहण कर सकता है, तो वे तुरंत ही अपना भार उतार कर सांसारिक व्यवस्थाओं से विरक्त हो गए। यहां पर प्रयुक्त एक शब्द अविचलेन्द्रिय अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि उनकी इंद्रियां विचलित नहीं हुई, न ही इंद्रिय शक्ति घटी, यद्यपि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। क्योंकि उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज किया था, अतः निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, किंतु उनकी इंद्रियां तरुण थीं, तो भी वे इंद्र तृप्ति में रुचि नहीं रखते थे। दूसरे शब्दों में वे आत्मसंयमी बने रहे, वे अपना कर्तव्य सांसारिक ढंग से पूरा करते रहे। यही महान भक्तों की व्यवहार प्रणाली है। भगवान चैतन्य के एक शिष्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी एक धनी व्यक्ति के पुत्र थे। उन्हें सांसारिक सुख भोगने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु जब उन्होंने सूबे का प्रबंध करने को दिया गया तो वे उसे सुचारू रूप से करते रहे। श्रील गौर सुंदर ने उन्हें सलाह दी कि अंदर से तुम अपने आप को तथा अपने मन को पूर्णतया पृथक रखो, किंतु बाहर से सारे कार्य उसी तरह करते रहो जिस रूप में होना चाहिए। ऐसी दिव्य स्थिति केवल भक्त ही प्राप्त कर सकता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जहां कि योगी अपनी इंद्रियों को बलपूर्वक वश में करना चाहते हैं, वहीं भक्त जन पूर्ण इंद्रिय शक्तियों से युक्त होने पर भी उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वे उन्हें उच्चतर दिव्य कर्मों में लगाते हैं। अनुवाद दोहराइए। इस प्रकार आत्मसंयमी परम पुरुष ध्रुव महाराज ने तीन प्रकार के सांसारिक कार्यों, धर्म, अर्थ तथा काम को ठीक तरह से अनेकानेक वर्षों तक संपन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को राज सिंहासन सौंप दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। किसी को अगर संसार में बहुत लंबे समय तक जीना है और अगर हमारे समाज को भी लंबे समय तक बनाए रखना है तो उसके लिए हमारी व्यवहार प्रणाली कैसे होनी चाहिए उसके बारे में ध्रुव महाराज के निजी उदाहरण के द्वारा हमें बताया जा रहा है। कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति करता है, इंद्रियों को वश में करते हुए भगवान की सेवा करते हुए अपने संसार के कर्म ऐसे भक्ति भाव से संपन्न करता है तो वो भौतिक नियम से परे हो जाता है। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरः। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कर्म उनके संतुष्टि के लिए किए जाते हैं वही कर्म कर्म बंधन से मुक्त करने वाले कर्म हो जाते हैं, किंतु जो कर्म स्वतंत्र भावना से स्वार्थ से भोग के भावना से किए जाते हैं वो हमारे बंधन के कारण बन जाते हैं। ध्रुव महाराज 36,000 साल रहे राज सिंहासन पर, बड़े अच्छे ढंग से धर्मशास्त्रों के आधार पर उन्होंने राज किया और 36,000 साल राज करने के बाद भी तरुण अवस्था में रहे। हालांकि 36,000 साल कोई कम आयु नहीं होती है, हमारे दृष्टि से 36 साल भी हो जाए तो आदमी धीरे धीरे अनुभव करने लगता है कि शरीर अभी थोड़ा धीरे हो रहा है, थोड़ा अभी शरीर की गति कम होती जा रही है। तो 36,000 वर्ष रहने के बाद भी यहां वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज की इंद्रियां बिल्कुल तरुण व्यक्ति की तरह तेज थीं, प्रबल थीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था। देखिए, जितना हम इंद्रिय भोग करते हैं, इंद्रियों का प्रयोग हम भोग में इस्तेमाल करते हैं, उस हद तक हमारी इंद्रियां जल्दी से कमजोर हो जाएंगी और जल्दी से हम वृद्ध अवस्था की ओर हम चलेंगे। इसलिए जो लोग अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, तपस्या करते हैं, खास करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो लोग ऐसे लगता है कि बुढ़ापे में भी तरुण लग रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं जल्दी से वो बुढ़ापे की ओर आगे जाते हैं। और जितना हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं उतना ही ज्यादा इंद्रियां हमें सताती हैं, हैरान करती हैं। इसलिए जो व्यक्ति अकलमंद है, जो व्यक्ति हमेशा तरुण रहना चाहता है, उसे भगवान की भक्ति में लगकर इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करना यह कोई आसान बात नहीं है। यता तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। कि विपश्चितः, जो बड़े बड़े बुद्धिमान विवेक पुरुष भी होते हैं उनका भी मन विचलित हो जाता है, कोई भी एक इंद्रिय उनके बुद्धि को उनके मन का हरण करके ले जा सकता है। तो इसलिए इंद्रियों को वश में करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जो इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं उनके लिए यह आसान हो जाता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्तर तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषिकेश की सेवा में जब इन ऋषिकों को, इन इंद्रियों को लगाते हैं तो हमारी इंद्रियां पूरी तरह से संतुष्ट हो जाती हैं। और जब इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं तो इंद्रियां भौतिक चीजों में तृप्ति के लिए पुकारती नहीं है, हमें तंग नहीं करती है। जब हमारा पेट भर गया हो तो हम इधर उधर भोजन के लिए क्यों भाग दौड़ करें। ठीक उसी तरह से इंद्रियां अगर हमारी पूरी तरह से कृष्ण की सेवा करने से संतुष्ट हो जाएं, तो इंद्रियां भौतिक संसार में भोग करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे। और इस तरह से हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएंगे और हम तरुण रहेंगे हमेशा। अभी कलयुग में जीवन की अवधि क्यों कम हो जाती है? क्योंकि लोग इंद्रियों को वश में नहीं करते हैं, जल्दी से जल्दी भोग करते हैं, बहुत ज्यादा भोग करते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि बहुत जल्दी जीवन की अवधि लोगों की कम होती जा रही है। कम से कम 100 साल पहले भी लोग इंद्र तृप्ति कम किया करते थे, भोग के साधन भी कम हुआ करते थे, लेकिन आजकल तकनीकी ज्ञान विज्ञान इतना बढ़ गया है, भोग के साधन भी बढ़ गए हैं, भोगवाद भौतिकवाद भी इतना बढ़ गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा भोग करने जा रहे हैं। और यही दर्शन है सारे संसार का, खाओ पियो मौज मनाओ। इसलिए लोगों की जीवन की अवधि कम होती जा रही है। पहले लोग 100 साल जीते थे, अभी 80, फिर 70, 60, इस तरह से आजकल हम देखते हैं बहुत जल्दी लोग बूढ़े हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी सारी शक्ति इंद्र तृप्ति में गंवा रहे हैं। और खास करके जो मैथुन का जीवन है वो सबसे बड़ा हमारे आयु का हरण करने वाला है, क्योंकि जितना हम इस जीवन में रुचि लेते हैं उतने ही हमारे सांस खत्म हो जाते हैं और उतने ही ज्यादा हमारे जो अंतरंग सत्व है, जीवन का सत्व है, वो खत्म हो जाता है। और सारा संसार तो हमें यही बता रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति करो, लेकिन ध्रुव महाराज को देखिए, 36,000 वर्ष तक जीने के बाद भी बिल्कुल तरुण लग रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि इतने बूढ़े हो गए, सफेद बाल हो गए और बाल जो पीठ झुक गया है उनको कोई छड़ी लेकर चलना पड़े, नहीं। और इसका राज क्या है कि उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया है। इतने योगी भी हुआ करते थे, आजकल भी है, 100-150 साल की उम्र के हैं, कम है भले लेकिन है ऐसे आज भी, तो अपनी तपस्या के बल पे वो लंबी उम्र जी सकते थे। तो कलयुग में कोई तपस्या की भावना नहीं रखते हैं, कलयुग तो केवल भोग का युग है, यहां कोई तपस्या नहीं है। अगर कोई 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर ले, बहुत बड़ी तपस्या है। कोई छोटी सी बात में घमंडी ना हो जाए, बहुत बड़ी बात है। कोई सुबह जल्दी उठे, बहुत बड़ी बात है। सुबह उठकर स्नान करे, बड़ी बात है। तो कलयुग की तपस्या का स्टैंडर्ड जो है वो सत्ययुग त्रेता और द्वापर युग के स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग है। तो हमारी तपस्या ये है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप रोज करें, 16 माला कम से कम। प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथों का अनुवाद और किया है, जिनमें सुंदर तात्पर्य लिखे हैं, उनका रोज श्रवण करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए। हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए, भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करना चाहिए और प्रसाद के अलावा और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए तपस्या है। पूर्व युगों में ये तपस्या नहीं मानी जाती थी, ये तो एक बस नॉर्मल चीज थी जो सबको करना था। लेकिन पहले जमाने में जो नॉर्मल था, आजकल के जमाने में बहुत कठिन लगता है हमें। तो कम से कम ये तपस्या भी अगर हम करें तो हम भी हमेशा जवान रह सकते हैं। आप में से कितने लोग जवान रहना चाहते हैं, हमेशा बूढ़े नहीं होना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है कि हमेशा जवान रहें। जवानी तो आएगी और जाएगी, लेकिन वास्तविक जो जवानी है, युवावस्था है, वो भगवान के धाम में होगा। जहां तक जब तक शरीर होता है, ये शरीर तो वृद्ध होकर ही रहेगा, ये शरीर का नाश तो होना ही है, लेकिन भगवान के धाम में आप जाएंगे तो वहां सभी युवावस्था में रहते हैं। भगवान के धाम में आपने किसी को देखा है जो टीबी कॉलेरा के बीमारी से हॉस्पिटल में जा रहा है, जो खांसी में से बड़ा पीड़ित है? ऐसे कई हमारे भागवत के ग्रंथों में कोई पिक्चर ऐसे देखा है या कोई वर्णन देखा है जो इतना बूढ़ा है कि छड़ी लेकर जा रहा है, या बेचारा कोई सो रहा उठ नहीं पा रहा है, बुखार है उसको? नहीं, भगवान के धाम में वहां चिन्मय जगत है, इसलिए सभी वहां तरुण है। और वो उसकी उसका राज क्या है कि उन्होंने आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया है भगवान की सेवा से। तो इसी कलयुग में भी रहते हुए हम अपने शरीर को थोड़ा बहुत जवान बना सकते हैं, हालांकि बुढ़ापा तो आएगा ही, बीमारी आएगी ही, मृत्यु भी आएगी, लेकिन कहीं मात्रा में हम हमारे शारीरिक कष्ट को भी कम कर सकते हैं, केवल हम भगवान की भक्ति करें तो। यहां बताया जाता है कि ध्रुव महाराज ने ऐसे ही जीवन यापन किया, शास्त्रों के अनुसार धर्म अर्थ काम उन्होंने का इनका पालन किया, नियमों का पालन किया, और जब ठीक समय आया तो अपना सारा जो राज्य है अपने पुत्र के हवाले करके वो चले गए। और ये हम सब के लिए एक सबक है कि हमें इंद्रियों को वश में करना चाहिए, और वश में रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए, और जब हमारी उम्र हो जाएगी 50 साल की तो हमारे पुत्रों को हवाले करके हमें जाना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए। अभी अगर हमने अपने आप के लिए प्रशिक्षण नहीं किया हो, ट्रेनिंग नहीं किया हो इंद्रियों को वश में करने के लिए, तो ये कैसे हो सकता है कि 50 साल की उम्र में तुरंत त्याग कर हम भगवान की सेवा में जाएं? संभव नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं बड़े बड़े राजा भी हुआ जो करते थे पहले जमाने में, बचपन से ही उनको ट्रेनिंग दी जाती थी इंद्रियों को वश में कैसे करना है, इसलिए उनको 50 साल की उम्र में या कभी कभी इससे कम भी ऐसे आयु में जब वो राज्य का त्याग करते थे उनको कठिनाई नहीं होती थी। लेकिन आजकल 50 साल की बात तो क्या है, 60, 70, 80 साल, जितने साल भी एक आदमी जिए अपने आखिरी दम तक अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता है, अपने व्यवसाय को छोड़ना नहीं चाहता है, अपने गाड़ी बंगले को छोड़ना नहीं चाहता है, अपने धन को छोड़ना नहीं चाहता, अपने पद को छोड़ना नहीं चाहता है, तो आखिरी दम तक आखिरी सांस तक इन चीजों में वो उलझा हुआ रहता है, तो फिर वो भगवान का स्मरण कैसे कर सकता है आखिरी समय? इसलिए हमारे जीवन का प्लानिंग हमें ऐसे करना चाहिए जैसे ध्रुव महाराज ने किया, बचपन में भक्त बने भगवान के, बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, केवल 5 वर्ष के थे जब वो भगवान के शुद्ध भक्त बने, और फिर ऐसे ही भक्ति के भावना से सारे राज्य को चलाया, घमंड नहीं कभी हृदय में नहीं आया। हम देखते हैं कि हमें थोड़ा सा पद भी मिल जाता है, थोड़ा सा टाइटल भी मिल जाता है, BA MA या थोड़ा कुछ किसी कहीं पे पद मिल जाता है, तो फिर हमारे अंदर हो जाता है कि मैं कुछ हूं, हम सोचने लगते हैं, भूल जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। इस तरह ध्रुव महाराज ने ऐसा नहीं किया, इतना बड़ा राजपद उनके हाथ में था, तनिक भी उनके हृदय में घमंड नहीं हुआ, समझते थे अच्छी तरह से कि ये कोई मेरी योग्यता नहीं है, केवल भगवान की शक्ति है ये, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल भगवान के दासों का दास हूं। ऐसे भावना से ध्रुव महाराज सारे राज को चला रहे थे। तो जब हम अपने छोटे छोटे राज चलाते हैं, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपनी सेवा भी करते हैं, मंदिर में भी अपनी सेवा करते हैं, तो हमेशा हमें नम्र रहना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं आना चाहिए सोचते हुए कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे वो पद चाहिए, या मुझे ये अभी जिम्मेदारी अभी करनी है, वो करना है। हमेशा हर एक भक्त को सोचना चाहिए कि कैसे हम आपस में नम्र होते हुए प्रेम से रहें और ध्रुव महाराज जैसे हम अपने कर्तव्यों को निभाएं। ऐसी भावना से निभाएंगे तो फिर हमारी भक्ति अच्छी तरह से चलती रहेगी। श्रीमद् भागवत के अधिकारी व्यक्तियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे बड़ी उनके उपदेश जो है वो उनकी एक वचन नहीं है, वो उनका जीवन है, कैसे वो जीते थे। और इस तरह से हम भी इंद्रियों को वश में करते हुए जिए तो आखिर में अंत समय हम भगवान का स्मरण आसानी से कर पाएंगे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल में जो भगवान का स्मरण करना, जो भगवान का स्मरण करता है आसानी से वो मेरे पास चले आता है। हे अर्जुन इसे निस्संदेह जान लो, कृष्ण भगवान कहते हैं। तो ये सब हमारा जीवन का उद्देश्य है। हमारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम संसार में रहकर संसार में कुछ बड़ा आदमी बने। हमारा उद्देश्य है, हमारा जीवन का उद्देश्य यह है कि हम भगवान के धाम में लौटकर चले जाएं, और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। बस जो भी हम कार्य कर रहे हैं केवल इस अंतिम उद्देश्य के लिए एक तैयारी है, ऐसे ही समझना चाहिए। सारे जीवन का प्लानिंग हमें ऐसे करना चाहिए, केवल इस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तब हमारा जीवन सही तरह से चलेगा। हम जीते हुए भी सुखी हो सकते हैं, मृत्यु के समय भी सुखी हो सकते हैं, और मृत्यु के बाद भी आनंद की अवस्था में रहकर भगवान के धाम में लौट के जा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, समह सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर में आ जाता है तब उसकी वास्तविक भक्ति शुरू होती है। मद भक्तिम जब लभते पराम, उस समय ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ब्रह्मभूत स्तर में पहुंच जाता है, आत्मा के स्तर में पहुंच जाता है, शरीर से संबंध छोड़ देता है, सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर से संबंध छोड़ देता है, और न शोचती न कांक्षति, किसी की अभिलाषा नहीं रखता संसारी चीजों के बारे में, न तो कोई शोक करता है, समह सर्वेषु भूतेषु सब प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है। ऐसी अवस्था में उसकी भक्ति वास्तव में शुरू होती है। मत भक्तिम लभते पराम, ऐसे पराभक्ति की प्राप्ति कर लेता है व्यक्ति। तो फिर से दोहराइए तो कि अभी हम क्या कर रहे हैं इसी जीवन में चले जाना चाहिए वापस। क्या संसार में कम रहे हैं हम? बहुत रह चुके, बहुत हो गया। अभी कहां जाना है? भगवान के धाम में वापस जाना है। करा दो, फ्री हो जाओ बस। और पुत्र पुत्री नहीं है दोनों तो और भी अच्छा, कोई सवाल ही नहीं, भगवान की सेवा लगे जाओ। लाइन क्लियर, ट्रैक क्लियर है ना? ज्यादा से ज्यादा सेवा, ऐसे ही प्लानिंग करना चाहिए हमें सारे जीवन का। कोई 20 साल का लड़का है नहीं सोचना चाहिए बहुत टाइम है, नहीं, सारे जीवन में प्लानिंग करना चाहिए। जो विवाह करना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, उनको भी प्लानिंग करना चाहिए कि ऐसे टाइम में विवाह कर लेना चाहिए, फिर आगे चल के हम जल्दी से 50 साल की उम्र में हम फ्री हो जाएं। फिर आगे चल के जो अभी 50 साल के उनको सोचना चाहिए कि हाँ अभी टाइम हो गया, अभी चलो, नोटिस आ गया 50 साल का हमारी उम्र हो गई, अभी और भी गहराई में जाना चाहिए। इस तरह से सभी को प्लानिंग करना चाहिए इस अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, जैसे हर एक वैदिक जमाने राज ऋषियों ने किया। बड़े बड़े राज ऋषि कर सकते हैं तो हम अपने छोटे छोटे राज को क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि संन्यास लेना है, छोड़ने का मतलब है कि भगवान की सेवा में लग जाना है पूरी तरह से। ठीक है, तो अभी आज कार्यक्रम है इसलिए जल्दी समाप्त कर लेते हैं कार्यक्रम यहाँ।
अमाधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारे यमुना तीरावन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदा नंदना ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय ओम विष्णुपाद परमहंसे कृष्ण भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति कि हे अर्जुन जो इस संसार में भला करता है जो धर्म का पालन करता है उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। ऐसे अच्छे कार्य का फल हमेशा अच्छा ही होता है और ये निस्संदेह बिना संशय के ये जान लो। अगर ऐसा भी हो कि कोई दुर्घटना आए हमारे जीवन में तो फिर भी हमारे धर्म के कार्य को हमारे भक्ति के कार्य को हमें त्यागना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी रुकावट क्यों ना आए। यहां तक कि गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर बीच में मृत्यु भी आ जाए तो जीव के आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये कोई रुकावट नहीं है। अपने भक्ति के जीवन को अगले जन्म से जीव आगे बढ़ा सकती है। इसलिए दूसरे अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण यही बात की पुष्टि करते हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर हम भगवान की तनिक भी थोड़ी भी सेवा करते हैं तो हमारा नाश कभी नहीं होगा। जो सेवा हमने की है उसका फल हमेशा हमारे साथ में रहेगा। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी क्यों ना हम कोई सेवा करें भगवान की, फिर भी इसका नुकसान कभी नहीं होता है। अनेक जन्मों तक ये जो छोटी छोटी सेवाएं हैं ये बढ़ती जाएंगी, ये सुकृति भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे से बहुत जन्मों के प्रयत्न के पश्चात हम भगवान के शरण में आ जाएंगे। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा है। किसकी कथा है कोई बता सकते हैं? 8वें स्कंद में गजेंद्र, गजेंद्र की कथा आती है श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में। बहुत बहुत साल पहले की बात है, ये तो हमारा ब्रह्मा जी के इस दिवस का 7वां मन्वंतर चल रहा है, जहां सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र मनु हैं, उनका नाम है वैवस्वत मनु, तो ये 7वें मनु है। लेकिन इसके बहुत साल पहले 4थे मनु थे जिनका नाम था तामस। अभी तक जो 7 मनु हुए हैं, 7वां अभी चल रहा है, तो पहले थे स्वयंभुवा, दूसरे का नाम था स्वारोचिष, तीसरे का नाम था उत्तम, चौथे का तामस। तो तामस मनु इनका समय था ये, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने साल पहले पुराने की बात है। ये हमारे वैज्ञानिक इसको ढूंढ नहीं निकाल सकते हैं कोई निशानी, ना ही हमारे इतिहास की किताबों में इतने समय, इतने प्राचीन काल का कोई वर्णन आता है। हमारे इतिहास की किताबों में तो केवल जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं उनमें केवल 5-10 हजार की बात करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में करोड़ों करोड़ों साल पहले पुराने की बात करते हैं। तो ये तामस मनु के समय की बात थी। त्रिकूट नाम का पर्वत था और है, जो कि दूध के सागर में है, और बड़ा सुंदर जगह है, रम्य वातावरण है त्रिकूट पर्वत के सारे पर्वत के ऊपर और पर्वत के नीचे जो भी पहाड़ हैं उनमें भी सुंदर वन हैं, नाना प्रकार के वहां फूल हैं, वृक्ष हैं, बगीचे हैं, बहुत ही सुंदर अमृत के समान जल से भरे हुए तालाब हैं, नदियां हैं, और इतना सुंदर है कि देव लोकों से भी देवी देवता गण और गंधर्व, किन्नर, विद्याधर इत्यादि ये सब यहाँ रमण करने आते हैं, और वहां के निवासी भी अक्सर वहां जाकर पिकनिक करते हैं। इतनी सुंदर जगह है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वहां के जो रहने वाले हाथियों के राजा थे जिनका नाम था गजेंद्र, गजपति, वो अपने सारे हाथियों के झुंड के साथ में वहां ऋतमत नाम के जंगल में या बगीचे में स्नान के लिए वहां गए। वहां सुंदर तालाब था और बहुत थके हुए थे सारे हाथी, और गजेंद्र का पीछा करते करते वो इस तालाब में गए और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने स्नान कर लिया। ठंडे पानी, शीतल जल से उनकी थकावट दूर हो गई, और शीतल जल का उन्होंने, जो कि अमृत के समान था, उसका पान किया, पूरी तरह से संतुष्ट हुए। अभी राजा गजेंद्र बड़े राजा थे, बहुत शक्तिशाली थे, और जब वो नदी की ओर आए, वो तालाब की ओर आए, तो ऐसा लग रहा था कि सारा पर्वत हिल रहा है। हालांकि त्रिकूट पर्वत बहुत बड़ा है, लेकिन इतना विशाल था ये हाथी कि सारे वहां के जो शेर और अन्य भयंकर जो भी पशु हैं वो भी भय के मारे वहां से भाग गए। केवल छोटे छोटे जो पशु हैं वो हाथी के, जिन्होंने आश्रय लिया था, केवल वही वहां पर थे। तो इस तरह से अपने परिवार और अपने समाज में मग्न चित्त था इस गजेंद्र राजा का, और इनके संतुष्टि के लिए वो रह रहा था और इनके संग में भोग कर रहा था। तो जब गजेंद्र राजा अपने परिवार सहित स्नान करने गया तो सारे हाथियों ने सब पानी पी लिया, और अपने सूंट में पर उन्होंने पानी निकाला, पिचकारी की तरह उनको सब के ऊपर पानी छिड़का दिया। हालांकि इसमें बहुत कष्ट हो रहा था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, जैसे कि पारिवारिक जीवन में करना पड़ता है, परिवार के सदस्यों को तृप्त रखने के लिए बहुत कठिनाई की आवश्यकता होती है। तो प्रभुपाद जी समझाया करते हैं कि ये केवल मनुष्य समाज में नहीं है, पशुओं के समाज में भी है, पक्षियों के समाज में भी है। जहां भी पारिवारिक जीवन है वहां परिवार को संभालने के लिए बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। तो इस तरह से गजेंद्र राजा अपने परिवार के साथ उस तालाब में रम्य वातावरण में रमण कर रहे थे, और पानी के सब पानी में इतना सब उत्पात उपद्रव होने के कारण वहां पे जो मगरमच्छ रहते थे वो विचलित हो गए और वहां पर मगरमच्छ के राजा वो बड़े क्रोधित हो गए। क्रोध के मारे उन्होंने आक्रमण किया गजेंद्र के ऊपर और अपने एक बहुत ही शक्तिशाली दांतों से अपने मुंह से इस मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर पकड़ लिए और इसके बाद भीषण युद्ध हुआ दोनों के बीच में, दोनों बड़े शक्तिशाली, मगरमच्छ के राजा और हाथियों के राजा। और जब ये देखा सारे दूसरे हाथियों ने कि गजेंद्र की क्या दशा है, तो पहले तो उन्होंने प्रयास किया कि उनको बचाने के लिए सारे हाथियों ने एक लाइन बनाकर एक के पीछे एक रहकर वो जमीन पे आए और थोड़े बहुत पानी में एक जैसे लाइन बनाया और गजेंद्र को खींचने का प्रयास किया पानी के बाहर। लेकिन मगरमच्छ इतना शक्तिशाली था कि गजेंद्र के पैर को इतने कड़क पकड़ा हुआ था कि उसे छोड़ा नहीं और इतने सारे हाथी भी गजेंद्र को इस मगरमच्छ के मुंह से छुड़ा नहीं पाए और धीरे धीरे से बाकी हाथी जो है निराश होने लगे और गजेंद्र के सारे जो पत्नियां थीं वो भी शोक के मारे रोने लगी जोर जोर से कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इस तरह से गजेंद्र भी सोच रहे थे कि अब मेरा क्या होगा, लेकिन इस समय उनके शरीर में बहुत बल था इसलिए वैसे चिंता ज्यादा नहीं हो रही थी जितना कि दूसरे हाथियों को हो रही थी। तो गजेंद्र ने धुआंधार युद्ध किया इस मगरमच्छ के राजा के साथ में और उधर सारे दूसरे हाथी बैठ के रो रहे थे। यही हम सबकी दशा है ये संसार में, जब मृत्यु का समय आता है, जो कठिनाई कोई आती है हमारे जीवन में, तो कोई हमारी मदद नहीं कर सकता है, वास्तव में कोई हमारा सहारा नहीं कर सकता है। हम अकेले इस संसार में आए थे और साथ में परिवार को लेकर जाएंगे, क्या सत्य क्या है, अकेले जाएंगे, किसी को साथ में लेकर नहीं जाएंगे। आए थे अकेले और हमें जाना है अकेले। संकट के समय कोई हमारा सहारा नहीं दे सकता है, केवल दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, दो शब्द बोल सकते हैं और बैठ के देख सकते हैं। बुढ़ापा जब आता है और व्यक्ति मृत्यु की ओर चले जा रहा है तो कौन उसके बारे में कुछ कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी दवाइयां दे सकते हैं, बैठ के थोड़ी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो होना है उसके प्रारब्ध से वो होकर ही रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से कोई हमें बचा नहीं सकता सिवाय भगवान श्री कृष्ण और उनके वैष्णव भक्त। तो इस तरह से ये सारे हाथी बैठकर रो रहे थे और इधर गजेंद्र राजा उनके संग में युद्ध कर रहे थे। और इस तरह से श्रीमद् भागवत में बताया जाता है पूरे 1000 वर्ष बीत गए। वहां के हाथी भी हैं, वो भी यहाँ के हाथी की तरह नहीं है, जैसे कि वहां के रहने वाले जो भी शेर पक्षी और निवासी जैसे देवी देवता गण, वो भी साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। ठीक उसी तरह से हाथी भी इतना लंबे उम्र तक जीते थे। तो 1000 वर्ष केवल युद्ध चला, लेकिन परिस्थिति हाथी के लिए इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि पानी हाथी का स्वाभाविक वातावरण नहीं है। हाथी तो जमीन का पशु है, मगरमच्छ पानी का पशु है, इसलिए पानी में मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली होता है और जमीन के ऊपर हाथी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो अगर हम उस जगह में युद्ध करें जहां हम ज्यादा शक्तिशाली होते हैं तो हम उस युद्ध को जीत सकते हैं। लेकिन हाथी की दुर्दशा क्या थी कि हाथी युद्ध कर रहे थे, गजेंद्र युद्ध कर रहे थे, कहां पर, पानी में। कई बार गजेंद्र ने प्रयास किया और मगरमच्छ को बाहर भी खींच निकाला, एक पैर दो पैर जमीन पे भी आ गए, लेकिन फिर गजेंद्र वो मगरमच्छ उनको खींचकर पीछे ले आते थे। इस तरह से अंदर बाहर ये 1000 साल तक चलता गया, कल्पना कीजिए। तो क्योंकि पानी हाथी का स्वाभाविक वातावरण नहीं है इसलिए धीरे 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 से हाथी की शक्ति कम होती गई और गजेंद्र अनुभव करने लगे कि मेरी शक्ति का घटन हो रहा है, मैं कमजोर होते जा रहा हूं। और क्योंकि पानी मगरमच्छ का स्वाभाविक वातावरण है, इसलिए मगरमच्छ ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली होते गया, और जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई उसका उत्साह भी बढ़ता गया और भी जोर से आक्रमण करने लगा इस युद्ध में। इस तरह से 1000 वर्ष के बाद में जब हाथी गजेंद्र ने समझ लिया कि अब मेरे लिए हार निश्चित है, तो लंबे समय के लिए सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। अभी मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे परिवार के सदस्य अभी मेरी सहायता नहीं कर सकते हैं, कोई मुझे बचा नहीं सकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस समय गजेंद्र राज